Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय
मृडाय नमः ॐ
मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम मृदाय नम ओम नमो मृदाय मृदाय नम ओम नमो मृदाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नम शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेतासतर उपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय में पांचवें मंत्र की व्याख्या चल रही है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम
अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम
बहवि प्रजाः सृजमानाम् स्वरूपः
बहवि प्रजाः सृजमानाम् स्वरूपः
अजो येको जुषमाणानुशेते
अजो येको जुषमाणानुशेते
जहात्येनाम् भुक्तभोगामजोऽन्यः
जहात्येनाम् भुक्तभोगामजोऽन्यः
द्वासुपर्णा सयुजा सखाया
द्वासुपर्णा सयुजा सखाया
समानम् वृक्षम् परिश्वस्व जाते
समानम् वृक्षम् परिशस्व जाते
तयोरन्यः पिप्पलम् स्वादुवत्ती
तयोरन्यः पिप्पलम् स्वादुवत्ती
अनश्नन्नन्यो अविचाकसीति
अनश्नन्नन्ययो अविचाकसीति
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
अनीशया शोचति मुह्यमानः
अनीशया शोचति मुह्यमानः
जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम्
जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमीशम्
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति
यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति
या इत्तत् विदुस्त इमे समासते
या इत्तत् विदुस्त इमे समासते
चन्दांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि
चन्दांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि
भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति
भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति
अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्
अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्
तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः
तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः
तो उपनिषद जगत की यथार्थता को प्रकाशित करते हैं, कहते हैं जगत में तीन प्रकार के अजन्मा हैं, एक लोहिता कृष्ण शुक्ल कृष्ण रूपा प्रकृति जो अपने समान रूप वाले अनेक वस्तुओं को विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, वह खुद अजन्मा है। एक दूसरा अजन्मा है जो उस प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए हुए समस्त कार्यों को आसक्ति पूर्वक भोगता है, और तीसरा अजन्मा है वह पहले जो अजन्मा माया है न उसके प्रति आसक्त होता है न उसके कार्यों के प्रति आसक्त होता है। एनाम जहाति, उसके तमाम बच्चे कच्चे के सहित उसका परित्याग कर देता है। इस प्रकार से ये तीन अज हैं, इन तीन अजों को समझना चाहिए। इन तीन अजों के बीच में फंसा हुआ है एक बकरा जीवात्मा, अज माने बकरा, अजा माने बकरी, अज माने बकरा। संस्कृत भाषा में अज शब्द का अर्थ होता है बकरी या बकरा, अज का अर्थ बकरी बकरा, अजा का अर्थ बकरा बकरी। जो अजन्मा है उसको कहते हैं अज। तो इसका मतलब बकरी को जो अजा कहा या बकरे को जो अज कहा वो पैदा ही नहीं होता है इसलिए ऐसा कहा है, ऐसी बात नहीं है, ये तो शाब्दिक अर्थ है। जीवात्मा तो स्वरूप से तो वह भी पैदा नहीं हुआ है, तब दुख उसके पैदाइश के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दुख उसके स्वरूप से संबंधित नहीं है क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ है, तब फिर इस संसार और सांसारिक संबंध से होने वाला जो दुख है उसके स्वरूप में तो नहीं है। इसी यदि जीवात्मा के स्वरूप में ही सुख दुख होते तब अजन्मा के कारण ही उस परमात्मा में भी सुख दुख होते। अजन्मा के कारण उस परमात्मा में जब सुख दुख नहीं है तो अजन्मा होने के कारण जीवात्मा को सुख दुख क्यों होता है? फिर तब उसका उत्तर दिया है अजो हे को जुष्माणो अनुसेते। जुष्माण, जुष शब्द का अर्थ होता है सेवन, भोग। प्रकृति और प्राकृत पदार्थों को भोगने की जो वासना है, वासना के साथ साथ उसके प्रति जो आसक्ति है उसके चलते यह द्वितीय अज है जीवात्मा, उसको सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है उसके चलते। तो इसका मतलब है कि आपको इस संसार में जो दुख है वह माया और माया के कार्यों को भोगने की अभिलाषा के चलते हैं। इसी को वेदांत में तादात्म्य अध्यास कहते हैं। माया माया के कार्य रूप जो उपाधियां हैं उनके प्रति जो हमारी तादात्म्य अध्यास बना है उसके चलते हमको अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे देह है देह के प्रति आसक्ति, जैसे इंद्रियां हैं इंद्रियों के प्रति आसक्ति और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, जैसे अंतःकरण है और अंतःकरण और अंतःकरण के विषयों के प्रति तादात्म्यता, तादात्म्यता शब्द का अर्थ होता है तद एव आत्मा तादात्मा। शरीर ही मेरी आत्मा है ये बुद्धि जब होगी तो शरीर के साथ तादात्म्य होगे। शरीर के बिना मेरा अस्तित्व तो नहीं रह सकता ये कहना ही शरीर को अपना आत्मा मान लिया उसने। किसी को तादात्म्य शरीर के साथ की तादात्म्यता। प्राण के बिना मेरा अस्तित्व तो नहीं रह सकता है ये मानना ही प्राण के प्रति तादात्म्यता है। इंद्रियों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, अंतकरण के मन बुद्धि के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ये निश्चय करना ही तादात्म्यता है। जबकि मेरा स्वरूप मेरा खुद पैदाइश मेरा जन्म नहीं हुआ है, तब उसी परमात्मा का भी जन्म नहीं हुआ है। परमात्मा का जन्म न होने पर भी उसके कोई देह आदि के साथ तादात्म्य नहीं है तो उसको कोई समस्या नहीं रहती है, तो फिर हमको क्यों समस्या रहेगी देह के बिना? शरीर के बिना परमात्मा को कोई समस्या नहीं रहती, प्राण के बिना उस परमात्मा को कोई समस्या नहीं रहता, इंद्रियों के बिना उस परमात्मा को कोई समस्या नहीं रहती, अंतःकरण के बिना उसको कोई समस्या नहीं है। जगत और जागतिक पदार्थ माया और माया से संबंधित कार्यों के प्रति कोई संबंध न रखने पर भी उस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ने वाला है? इस भ्रांति को तोड़ना बहुत जरूरी है। सुखी होना चाहते हो तो इस भ्रांति को तोड़ना बहुत जरूरी है। संपत्ति के बिना भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो हमारी यही तो समस्या है। उन जंगल और गुफा और कंदराओं में रहने वाले जब उन महातपस्वियों को संपत्ति बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हमको क्यों फर्क पड़ेगा? उन दिगंबर संत को सुखदेव को संपत्ति के और वस्त्र के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हमको क्यों फर्क पड़ता है? और ये आपके द्वारा खड़ा किया हुआ ये समस्या ये आपके लिए मुसीबत बन रहा है। संसार और व्यवहार आपके द्वारा खड़ा किया हुआ है। ये संसार ये व्यवहार कोई परमात्मा ने खड़ा नहीं किया है। ऐसा ही करोगे तभी तुम्हारा व्यवहार चलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ये कोई परमात्मा के सिद्धांत नहीं है, ये तुम्हारा सिद्धांत है और ये भी तुम्हारे मानी हुई सिद्धांत है। और जितना तुम एक नियम बनाते जाओगे उसी नियम में तुम फंसते जाओगे। और जितना इन नियमों का तुम इस नियमों को जितना लूज करोगे तो उतने आपको आसानी होगी। अपने ही नियम बनाया है, जब बेटी को आप ब्याह करके शादी करके किसी के घर भेजते हो खाली बेटी को खाली हाथ क्या भेजना है? थोड़ा बहुत संपत्ति भी भेज देते हैं। और किसी के पास संपत्ति बहुत था, उसने ये निश्चय कर लिया, उसने भेज दिया, जिसको आप लोग अपनी प्रचलित भाषा में दहेज कहते हो, जिसके पास संपत्ति भी था। बेटी की विदाई की तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत भेज दिया संपत्ति, उसके पास तो था, तब आपने देख लिया। उसने बेटी की विदाई भी की और थोड़ी बहुत संपत्ति भी दिया, तब फिर मेरी बेटी की विदाई में मैं भी क्यों नहीं संपत्ति दूं? आपने भी नियम बना ली कि मैं भी दूंगा, तब क्या समस्या हुई?
उसके पास तो था इसलिए दिया था, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे पास था नहीं फिर भी तुमने नियम बना ले कि उसने दिया तो मैं भी दूं, तो अब समस्या तुम्हारे पास आ गई कि नहीं बोलो। जिसने दिया उसको तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन उसका देखा सीखी तुमने जो नियम बनाने लग गए तो तुम्हारे पास ये मुसीबत आ गया। तुम न देते तो क्या फर्क पड़ता। अब यही नियम बन गया कि उसने देखा कि उसने उसकी बेटी को लाया तो संपत्ति भी ले आया, मैं भी ऐसी बेटी को किसी की ऐसी बेटी को लाऊंगा जिसके चलते थोड़ी बहुत संपत्ति भी आ जाए, उसने फिर नियम बना ली। ये देखा सिखी का जो नियम है ये कोई विधान नहीं है। विधान तो कन्यादान का विधान है, द्रव्यदान का विधान तो नहीं है कन्यादान के साथ है? तो ये जो दिखा सकी के चलते जो नियम बना रहे हो एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, ये नियम ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। भुक्त भोगा, ये जो आसक्ति है जुसस्येणा, ये जुसपना है माया और माया के कार्यों में जो आसक्तिपना है यही हमारे दुख का कारण है। अजो ये को जुषमाणो अनुसेते अनुसेते। श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने इसको भागवत के उस प्रसंग के साथ जोड़ दिया। तो आप लोगों ने भागवत कई बार सुने हैं तो भागवत में एक पुरंजन पुरंजनी पुरंजन उपाख्यान करके बहुत प्रसिद्ध है। वहां एक पुरंजनी है, उसके साथ एक व्यक्ति का मिलना हुआ, उस व्यक्ति के साथ उस पुरंजनी का मेलजोल हुआ। पुरंजनी उस व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं हो रही है लेकिन वो व्यक्ति पुरंजनी पर आसक्त हो गया। भागवत का प्रसंग है कि नहीं देख लो। पुरंजनी कोई व्यक्ति को खोजते हुए नहीं घूम रही है लेकिन पुरंजन पुरंजनी को खोजता हुआ घूम रहा है, ये भागवत पढ़ लेना स्पष्ट है। और उसको देखते ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा किसने, पुरंजनी ने पुरंजन के साथ प्रस्ताव रखा कि पुरंजन ने पुरंजनी के साथ प्रस्ताव रखा। आप लोग तो कई बार सुने हैं भागवत स्पष्ट है। पुरंजन ने उसको पूछा कि अरे तुम किसकी बेटी हो, तुम यहां किस लिए हो, ये तुम्हारे साथ जो है ये कौन है, क्यों लेकर घूम रही हो। तो उसने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अपने भागवत तो सुनी है, पुरंजनी ने बड़ी शर्त रख दी, यदि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरे नियमों को तुम यदि तोड़ दोगे तो जिस दिन नियम को तोड़ोगे उसी दिन मैं तुमको छोड़ दूंगी। पुरंजनी को तो पुरंजन के गर्ज नहीं है और पुरंजन को पुरंजनी का गर्ज है। अब वो जो जो शर्त पुरंजनी रखती गई वो सब शर्त उसने मंजूरी की, ठीक है तुम ऐसा कहती हो तो यही सही। पुरंजनी कहती है कि कभी भी मेरे सामने तुम नंगे नहीं होना। लेव जी, पुरंजनी कहती है कि मेरे तीन भेड़ हैं, उस भेड़े को तुम हमेशा रक्षा करना है, ये सारी प्रसंग उसमें है। मेरे खाने के बाद तुम खाना, मेरे सोने के बाद तुम सोना, मेरे सोने से पहले नहीं सोना, मेरे खाने से पहले नहीं खाना, कितने शर्त रख दिया है उसने। और ये मूर्ख है कि सभी हां हां करता है, क्या तुम जो कहोगे वो मानने को तैयार हूं। वो ये नहीं कहता है कि सभी शर्त तुम हमको मनवा रही हो और एक शर्त तुम हमारा भी मान लो, ये नहीं कहता है। उसके शर्त को मानता रहता है बस। परिणाम क्या हुआ कि उसके साथ वह आसक्त हो गया, वो सोए तब वो सोए, वो उठे तब वो उठे, वो खाए तब वो खावे, पुरंजनी के पश्चात ही अनुगामी हो गया। तो इतना आसक्त हो गया उसके प्रति। और जैसे कि भागवत के प्रसंग है, पुरंजनी का तो नीति ही यही था, जैसे हो इसको फंसाओ। माया का तो नीति ही यही है, जैसे हो इसको फंसाओ। तो उसने फंसाया, वो फंस गया। बाद में जब उसके नियमों को उसने पालन नहीं किया तो छोड़ के चली गई। इतने दिनों से उसके साथ रह रही थी, एक छोटा सा नियम पूरा नहीं हुआ। आप लोगों ने भागवत सुनाई है, अचानक बादल आ गए और मेघ की गर्जना होने लगी, और उसी समय में उस पुरंजनी के तो भेड़ को कोई चुरा के ले गया, और उस समय पुरंजनी को पता चला कि मेरे भेड़ ले गए, और उसी समय में उसने पुरंजन को जगाया, अरे भाई मेरे भेड़ कोई चोरी करके ले गया, उसकी रक्षा नहीं करोगे? तो वह खड़ा हो गया, वस्त्र नहीं पहना हुआ था, पहले तो अंधेरा अंधकार में था, वो ऐसे ही धनुष बाण उठा के दौड़ पड़ा। उसी समय बिजली चमक पड़ी, पता चला वो तो निर्वस्त्र है। तो शर्त भंग हो गए, छोड़ दिया उसी समय में। ये भी एक रूपक है। ये कहानी द्वारा हमको ये बताने जा रहे हैं, माया तुम्हें तब तक पकड़ती रहेगी जब तक उस माया के उपाधियों को तुम धारण करते रहोगे। जब तुम उस माया के सभी उपाधियों का परित्याग कर दोगे तो फिर माया तुम्हारा परित्याग कर देगी। पुरंजन को पुरंजनी के द्वारा परित्याग कर देने में ये तो निमित्त क्या बनाया पुरंजनी ने कि तुम नंगे हो गए। शर्त था कि नंगे नहीं होना, और तुम नंगे हो गए, अब मैं तुम्हें परित्याग कर दूंगी। भागवत का प्रसंग। यही बात जब आप पंचकोश विवेक करते हो, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, अन्नमय कोश मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अन्नमय कोश अन्न के द्वारा प्रकट हुआ है, अन्न में ही टिका हुआ है, बाद में वह विकृत होकर अन्न के रूप में ही परिणत होकर यह नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तब वह विकार युक्त अन्न से बना हुआ यह अन्नमय कोश मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? इसी तरह प्राणमय कोश मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। प्राणमय कोश क्योंकि प्रकृति के रजोगुण के व्यष्टि और समष्टि कार्य हैं, और प्रकृति के व्यष्टि समष्टि कार्य होने के कारण प्रकृति खुद जड़ है, तो उस प्रकृति के कार्य रूप यह प्राणमय कोश मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है। प्राणमय कोश में 10 अवयव हैं और मैं एक हूं। प्राणमय कोश 10 हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, ये 10 हैं और मैं तो एक हूं। और ये 10 में से एक के न रहने पर भी मैं रहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राणमय कोश मेरा स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से मनोमय कोश मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मनोमय कोश भी एक तो प्रकृति का कार्य है, सत्वगुण व्यष्टि का, समष्टि का, व्यष्टि समष्टि का कार्य है, दूसरा मन स्वयं ही परिणामी है, वह समय और विषय के आधार पर उसका रूप बदलता रहता है। सामने घट आ गया तो घटाकार के रूप में परिणत हो जाएगा, पट आएगा तो पटाकार के रूप में परिणत हो जाएगा। मन तो विषय के आकार में परिणत होता रहता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी घटाकार के रूप को धारण करता है, कभी पटाकार रूप धारण करता है। तो इन दो कारणों से मनोमय कोष मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है। एक तो वह प्रकृति का कार्य है, इसलिए वह प्रकृति का कार्य, प्रकृति जड़ है, जड़ का कार्य होने से मन भी जड़ है। तो मनोमय कोष मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, मैं चैतन्य हूं, वो जड़ है, मेरा जड़ के साथ क्या संबंध है, जड़ मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है।